نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بعد نماز جمعہ تھوڑی دیر اپنے بزرگوں کی ارشاد فرمائی ہوئی دینی اور اصلاحی باتیں سنائی جاتی ہیں. عام طور سے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا ثانی نور اللہ مرکزہ کے دینی اور اصلاحی ارشادات و فرمودات سنائے جاتے ہیں. آج کل کتاب انفاس عیسیٰ میں سے سنایا جا رہا ہے جو حضرت کے ملفوظات کا مجموعہ ہے. تفویض و توکل سے متعلق ارشادات چل رہے ہیں. ضرورت ہے جاننے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی. ارشاد فرمایا کہ خدا کی تجویز میں اپنی تجویز کو فنا کر دو. خدا کی تجویز میں اپنی تجویز کو فنا کر دو. ابتدا میں تو اہل اللہ کو یہ حالت تکلف کے ساتھ حاصل ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی حکمت و قدرت کو سوچ سوچ کر اپنے ارادے اور تجویز کو فنا کرنا پڑتا ہے. تو حکمت اور قدرت کو سوچ سوچ کر یہ تکلف ہوا, پھر یہ حالت ان کے لیے امر طبعی بن جاتی ہے, جیسے مقتضائے طبع کہ وہ بتقاضائے طبع ثابت ہوتا ہے. ایک درجے میں گویا کہ غیر اختیاری ہوتا ہے, غیر اختیاری طور سے ان اعمال کا صدور ہوتا ہے. تو شروع میں تکلف ہوتا ہے, پھر وہ تکلف نہیں باقی رہا, تعبد ہو جاتا ہے. خدا کی تجویز میں اپنی تجویز کو فنا کر دو. حضرت اقدس ثانی قدس روح نے یہی ارشاد فرمایا کہ تمام تشویشات کی جڑ اور بنیاد تجویز ہے. اگر آدمی تفویض اختیار کر لے, اپنے معاملات اللہ کو سونپ لے, مانگے تو اللہ تعالیٰ سے جو اس کے صحیح دینی یا دنیاوی مقاصد ہیں, مگر نتیجے کے تعلق سے تفویض ہو, تجویز نہ رہے, تو پھر الجھن, ضیق, تنگی اور پریشانی طبعی درجے کی ہوگی مگر عقلی درجے کی نہیں ہوگی. طبعی درجے میں تو ہو سکتا ہے, قلب نبوت میں جب ہو سکتا ہے تو پھر قلب ولایت کی کیا بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ہوتا تھا. ضیق صدر کی جو کیفیت ہے اسے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ضیق صدر اور بھی چیزوں سے ہوتا تھا. تسلی کا طریق اپنایا گیا قرآن پاک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت سے مواقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور بھی انبیاء کرام کو تسلی دی. وہ الگ بات ہے, طبعی درجے میں ہونا مزائقہ ہے, عقلی درجے میں نہیں ہوتا. آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے, حکیم بھی ہے, مالک ہے, تو جو چاہے کر تصرف. کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے, بیٹھا ہوں میں مطمئن کہ یا رب حاکم بھی ہے کہ حکیم بھی ہے. حاکم ہے تو ہر طرح کے فیصلے اور تصرف کا حق ہے, اور حکیم ہے طب والا حکیم نہیں, تیرے ہر فیصلے میں تیری بھرپور حکمت ہے. سر بھید اور راز کو تو بندہ نہیں سمجھ سکتا, اجمالاً اتنا یقین رکھتا ہے, اور پھر تیری حکمت و مصلحت ہے, اور ہماری کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, ہمارا نفع اور فائدہ ہے, دنیا کا ہو چاہے جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا, یا پھر آخرت کا ہو. حیض ہو, خدا کی تجویز میں اپنی تجویز کو فنا کر دو. ابتدا میں تو اہل اللہ کو یہ حالت تکلف کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. خدا تعالیٰ کی حکمت و قدرت کو سوچ سوچ کر اپنے ارادے اور تجویز کو فنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر یہ حالت ان کے لیے امر طبعی بن جاتی ہے. इसीलिए वो किसी हाल में परेशान हमारे हजरत शाह जहलाबादी मौलाना मसूरुल्लाह खान साहब नवल्लाहु मरकज़ुहु सुनाया करते थे। तो कितने बुजुर्गों से किसी ने पूछा अकलमंद की तारीफ, कहा जो परेशान ना हो, परेशान ना हो, परेशान। हजरत उसका तजिया करके फरमाते थे जिसका हाल उड़ा उड़ा ना हो, तशवीश ना हो, उलझन ना हो, परागंदगी ना हो, अफसुर्दगी फजमुर्दगी ना हो, मुतमईन है, हशाश बशाश है। तो सब ने यही जवाब दिया, अकलमंद वो है जो किसी भी हाल में परेशान ना हो। मजीद फरमाया कि अपने इरादे को खुदा के इरादे का ताबे कर दें कि जो कुछ होगा हम उस पर राजी हैं, इस पर अमल शुरू कर दीजिए और बराबर करते रहिए, इंशाअल्लाह एक दिन मलके राशिख पैदा हो जाए और इसी से राहत हासिल होगी, बेदून इसके राहत नहीं मिल सकती। और ये कुछ मुश्किल नहीं, क्योंकि कसरत तकरार से सब काम आसान हो जाते हैं। देखिए आजकल जो लोग पुख्ता हाफिज हैं वो पहले ही दिन से पुख्ता नहीं हुए, बल्कि कसरत तकरार से पुख्ता बने। बार बार पढ़ते रहना, याद करते रहना, पढ़ते रहना, याद करते रहना, दवा में इस्तेमाल हो तो हिफ्ज गासिख हो जाता है। ये फितरी और अपनी चीज है, नफ्सियाती। या आज जो खुशनवेश है वो कसरत मश्क ही से खुशनवेश हुआ है, ये नहीं कि पहली मरतबा बा सही लिख लिया था और अलिफ सही लिख लिया था। और जीम तो बहुत वक्त लगता है उसका पेट सही बनाने में, जीम हा आइन गैन वगैरह का, हाँ नुक्ते इतने नुक्तों का बनेगा, नाप तोल के तब भी बहुत दिन लगते हैं, होगा जब भी जब हाथ चलाएगा। कितनी ही बड़ी अक्ल हो और कैसा ही जहीन हो, सिर्फ देख लेने से नहीं सही लिख सकते। इसी तरह कसरत तकरार से मकाम तफवीद हासिल हो जाएगा, यही ऐन अब्दियत और बंदगी है। गुलाम को ऐसा ही होना चाहिए। हमारे हजरत शाह जहलाबादी मौला मसूरुल्लाह खान साहब ने वल्लाह उमर कदो का मकबूला में सुनाया करता हूँ, सुनाया करते थे तालिबी मसालिकीन को कि आका ने गुलाम से पूछा क्या खाओगे, कहा जो आका खिला दे, क्या पहनोगे जो आका पहना दे, कहाँ रहोगे जहाँ आका रखे। ये है अब्दियत और गुलामी, तो मिसाल दे के समझाते थे। तो बंदा भी तो अल्लाह का गुलाम ही है, यही है हकीकी अब्दियत और गुलामी। आगे एक और इरशाद है, तफवीज कामिल, पूरे तौर से अपने मामलात आदमी अल्लाह को सौंप। कौन है मुफव्विज कामिल? इरशाद फरमाया कि मुफव्विज कामिल वो है कि अगर उम्र भर भी उसके कान में ये आवाज आए, अगर उम्र भर उसके कान में ये आवाज आए इन्नका मिन अहलिल जन्ना, या ये आवाज आती रहे कि इन्नका मिन अहलिन नार, दोज़खी है, ये हो या वो हो, तो किसी वक्त भी अमल में जर्रा बराबर भी कमी न रहे, बदस्तूर काम में लगा रहे, पहली आवाज से न बेफिक्र हो और न दूसरी आवाज से दिल बर्दाश्त हो। ये पहली आवाज जन्नती, खबर जब जन्नती है तो क्या करें, सब बोरिया बिस्तर आमाल का उठा के बंद करके रख दें, जन्नती तो हो ही गई ना, फिक्र न लगा। हमारा काम तो अमल करना है, करते रहेंगे। और अगर ये कह दिया गया तू दोजखी है तो मायूस ना हो, दिल बर्दाश्त का, इतने दिन हो गए, इतने इबादत करते, इतने आमाल करते, जब तक नहीं कबूल हुए तो बस छोड़ो, बस क्या होगा, कुछ बाधित नहीं होगा। तो किसी एक शख्स का या बुजुर्ग का वो किस्सा भी है, तो वो इबादत करते थे, इबादत करते थे, इबादत करते थे, और आवाज ही आती थी कि कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं, रिहा होता था, क्या होता था। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो, मेरा काम इसके अलावा है ही क्या, वो उनका काम है, मेरा काम तो ये है कि मैं तो जो अब्दियत का तकाजा है इबादत करता रहूँगा, करता रहूँगा। मौलाना रूह रहमतुल्लाह ने किस्सा लिखा है कि फिर उधर ऐसी कबूलियत हुई कि कबूल अस्त गरचे हुनर ने इस तरह के जुज़ मां पना है दिगर ने, कहते हैं कि डर ही नहीं है, मैं जाऊं कहां पे, मैंने तो यही कहा मुझे तो करना है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जब ये हो गया कहते हैं कबूल है, हुनर हुनर नहीं है, कोई खास कमाल की बात नहीं, लेकिन असल चीज अल्लाह ताला को दिलों तेरी वाबस्तगी हमारे ही दर से है, कबूल दर से हुनर तेजुजमा अपना है, और कोई दर ही नहीं है। तो इसीलिए तो ख्वाजा मजजूब साहब रहमतुल्लाह ने हजरत थानवी नवल्लाह मकरो की जो तालीमात होती थी उसको जो मंजूम कर देते थे कि जरबें किसी के नाम की दिल पे यूं ही लगाए जा, गो न मिले जवाब कुछ दर यूं ही खटखटाए जा, और खोले खोले वो या ना खोले दर इस पर हो क्यों तेरी नजर, तू तो बस अपना काम कर यानी सदा लगाएगा, और चैन से बैठ रहेगा घर काम के क्या रहेंगे पर, गो न निकल सके मगर पिंजरे में फड़फड़ाएगा। शिकारी की मिसाल से बात समझाएगा, मालिक को रहम आएगा ही, और अगर परिंदा बैठ रहेगा तो उसके कल्ब में रिक्कत कहाँ से पैदा होगी, उसे क्या हो सकता है वो समझे बस तो ठीक है। मिसाल से समझाने बात अपना काम करता है। हजरत ने तवक्कुल को समझाया, तवक्कुल तो इन्हें इफ्ता वालों को एक दिन समझाया था, आजकल तअक्कुल वाले लोग हैं, तवक्कुल वाले कहाँ, तअक्कुल खूब भाव लोग पहले तअक्कुल, माकूलात से तो मुनासिबत है नहीं, और माकूलात तो मशरूबात से खूब है। फरमाया तवक्कुल मतलूब ये है, देखो हजरत के अल्फाज के, तुम अल्लाह ताला पर एतकाद रखो, हुआ अमल कल फेल कल, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता, जो वो चाहेंगे वही होगा, और खिलाफ शरा तदबीर न करो, वल्लाह तुम मुतवक्किल हो। इख्तियार असबाब की बात भी आई, बोलते नहीं, सिर्फ अगर ये अमल कल्ब पाया गया, कल्ब का यकीन ज़ाते बारी ताला के फैसले, बस नतीजा उम्र तक रहेगी। अब अगर कल्ब में ये पुख्तगी और ये कुव्वत और ये एतकाद और यकीन की कैफियत इख्तियार असबाब इख्तियार करके हो कि वो उन्हीं उस तबके के लोगों में से है, तो ऐसा करके तवक्कुल पाया जाएगा, और अगर उस दर्जे के लोगों में से हो कि नहीं इसके बगैर भी उसके कल्ब में वो बात पैदा हो सकती है, उसका कल्ब ज़ाते बारी ताला के साथ ताल्लुक के एतबार से वो कुव्वत रखता है जैसे कल्ब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा और घर वालों के लिए क्या छोड़ दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के भरोसे पर कुछ नहीं, तो भी तवक्कुल हो सकता है। उस दिन हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला नहीं फरमाया था कि बस अब तो मैं समझ गया कि मैं कभी अबू बकर पर नहीं पा सकता, लोग यूं समझते हैं और समझाया जाता है कि असबाब इख्तियार करो और फिर अल्लाह पर भरोसा करो तो होगा तवक्कुल। इख्तियार असबाब माहियत तवक्कुल में दाखिल नहीं है, आवारिज में से है, कभी लग भी जाता है उसके साथ और कभी मुनफक मुतखल्लिफ भी हो जाता है। हजरत अक़दस नानोतवी क़ुद्दुस रूह कवि ने सुनाया था, तर्क असबाब करके तवक्कुल कुछ नहीं है, और खतूत लिख दिया अहबाब को आ जाओ हज में चल रहे हैं। हजरत गंगोई फरमाते हैं कि कुछ है भी तो नहीं है, हो जाएगा बम्बई यहाँ तक का किराया अल्लाह ने भिजवा दिया लोगों के आते आते, फिर बम्बई पहुंच करके और भी लोगों को खतूत लिखवा दिए या कहलवा दिया इत्तला करा दी, नहीं था। और ये जो समझाया जाता है हदीस अराबी से, ये बैठे हैं दानिश, क्योंकि इनकी दानिश पूरी राम नहीं हुई, इन्हें नहीं बता दू। हाँ ये किल व तवक्कुल मुहद्दिस पढ़ाता हुआ बताएगा, देखो ये है तवक्कुल, कुल ये है कि असबाब इख्तियार करो फिर भरोसा करो, यहाँ से समझाता है। ये नुस्खा है अरबी के लिए, ये हकीकत नहीं है तवक्कुल की, आराबी के लिए नुस्खा पा रहा बेचारा बद्दू है, कौन सा कुव्वत कल्ब का मालिक को हामिल होगा। तो उसके कल्ब में तवक्कुल की हकीकत जब ही पाई जा सकती थी और पाई जा सकती है एक आम आदमी के कल्ब में, जब वो असबाब ही अख्तियार करे कि ताला खुला छोड़ दिया और 10-20 लाख रुपए हैं वहां पर, तो नमाज नहीं पढ़ सकेगा। 10-20 तो मैंने ज्यादा कह दिया, 50,000 रुपए ही अगर है नहीं पढ़ सकेगा, वहीं रहेगा। तो कुव्वत कल्ब जिनकी, बस जैसे जिस मर्तबे और दर्जे के लोग हैं उनके एतबार से, वरना हकीकत में तवक्कुल के तहक्कुक के लिए इख्तियार असबाब जरूरी नहीं। समझाया था इनको, समझाना था मुझे असल में तकलीफ को, तो मैंने कहा पहले उसकी नजीर समझो, तवक्कुल समझाया। और वहीं ने समझाया ला बिशर्ती शे, बिशर्ती शे और बिशर्ती लाश है। हालांकि इसे बहुत बड़ी फलसफियाना बहस समझा जाता है मंत्रियों में, दारुलूम में उस्ताद उस्ताद रखे जाने थे, उनका तकर्रुर होना था, तो इम्तिहान जिसे तुम लोग इंटरव्यू कहते हो, मैंने इम्तिहान कह दिया, बस इतना फर्क है भाई, तुम अंग्रेजी बोल देते हो, मैंने अरबी और उर्दू में कह दिया। हाँ, हजरत मौलाना मंजूर नमानी के पास पहुंच गया खुलवानी मुल्ला हसन, और वो खुद बताते थे कि मुझे इत्तिफाक से बिशर्ती शे, ला बिशर्ती शे, बिशर्ती ना शे, और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर ये कि चुप नहीं हुआ, बस मैं बोलता रहा बिशर्ती शे होता है, कभी ला बिशर्ती शे होता है, ला बिशर्ती शे होता है, कि बस अल्लाह का फजल करम हुआ, वरना कई बार मेरा मैं नाकाम हो चुका था, इस मरतबा कामयाब हो ही गया। बहुत आसान है। तो ये जो हजरत ने फरमाया मैं इन्हें बता रहा हूँ, देखो एतकाद का सिर्फ तज़किरा किया है, वही भरोसा, ये हम आमाले कल्ब में से, जैसे दुआ हकीकत में ये दुआ भी फेले कल्ब है, लिसान के बगैर तहकुक हो सकता है, तौबा भी अफ़ाले कुलूब में से है, लिसान के बगैर तहकुक हो सकता है, नीयत और इरादा तो है ही फेले कल्ब है, नमाज के ताल्लुक से नीयत और इरादा, बस आवाम को कहा जाता है, उनके लिए फुकहा ने मुस्तहब करार दे दिया है, लिमन ला तजतमियु अज़ाइमुहुम, ये वो ज़बान से रखिए, ख़वास के लिए नहीं है, मुजद्दिद अल-तसानी ने अल्लाह मक़बूल है, तो तलफ़्फ़ुज़ बिन्नियत को बिदअत करार दे दिया इसीलिए। ये फरमाया कि तवक्कुल मतलूब यह है कि तुम अल्लाह ताला पर एतक़ाद रखो, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये जो वो चाहेंगे वो ही होगा, और खिलाफ शरा तदबीर न करो, वल्लाह तुम मुतवक्किल हो। इरशाद फरमाया कि तुम अपनी तरफ से न बला तजवीज करो न राहत, नहीं है कि अल्लाह ताला से मुसीबतें मांगो और बलाएं मांगो, उलझने और परेशानियां मांगो, ना आ जावे तो राजी बरजा रहो, और अल्लाह ताला से अपने जोफ़ तबा का हवाला देकर उनके इजाले की दुआ। हाँ, ये भी नहीं उसमें कि बहुत कुव्वत वाले बनो और ताकत वाले बनो और पहलवान बनो। सैयदुल ताइफा हजरत अक़दस हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की नव्वर अल्लाह बरकतहु, इसीलिए एक शेर में तरमीम फरमाते थे, वो शेर है सरे तस्लीम समहे दो मिसाले आदमी, अगर चाहें अगर बख्शें जहर किस्मत, न बख्शे तो शिकायत क्या, सरे तस्लीम समहे दो मिसाले यार। हजरत हाजी मिराजुल्ला साहब फरमाते हैं भाई इसमें तो अपनी कुव्वत का इजहार है, मैं तो इसे थोड़ा सा अब्दियत के खिलाफ समझता हूँ। हम ऐसे हिम्मत कुव्वत वाले अल्लाह ताला के सामने अपनी कुव्वत जाहिर करें, पहलवानी मैंने तरमीम की है, अगर बख्शें जहे किस्मत, न बख्शें तो करूँ जारी, बंदे की ये खारी क्यों मिजाजे यार में आए। हजरत हाजी मिराजुल्ला साहब हजरत मौलाना थानवी कुद्दुसी को उन्हें नकल फरमाया, और ये भी नकल फरमाया کہ ایک مرتبہ حضرت مجلس میں بیان فرما رہے تھے، بھائی صحت اور تندرستی بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اسی دوران کوئی شخص آئے پریشان حال بیمار تھے اور حضرت سے دعا کی درخواست کی، کہ اب ہم سوچ رہے تھے کہ دیکھیں حضرت کیا دعا کریں گے، اس لیے کہ اگر بیماری کے ازالے کی دعا کریں گے تو ابھی تو سمجھا رہے تھے کہ بیماری نعمت ہے، تو ازالے نعمت کی دعا کیسے کریں گے؟ اب یہ حضرات تو اہل قلب تھے، اہل دل، اہل قلب بھی جانو کسے کہیں، ان کے جو قلب تو سبھی کے پاس ہے، دیکھ رہے ہو دیکھو، ہاں اہل نشان نہیں تھے علماء جو، ان کا امتیاز نشان نہیں، ان کا امتیاز قلب اور دل، ان کا امتیاز قلم بھی نہیں، ان کا امتیاز قلب اور دل، یہ نہیں کہہ رہا میں کہ کوئی تعارض ہے، لیکن امتیاز ما بھی امتیاز یہ ہے ان کا، اس لیے انہوں نے ان پر توجہ، تو خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، اور اس میں بھی وہ نہیں سوچتے تھے دیکھتے تھے کہ ہم ایسا لکھیں اور ویسا لکھیں، الفاظ کے پیشوں میں الجھتے نہیں جانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے غواص، مقصد کی بات کہتے تھے، مؤثر ہوتی تھی، تو اہل قلب اہل دل تھے بہرحال، اور حضرت حاجی صاحب کا تو عجیب حال تھا، ادھر ان حضرات کے دل میں یہ خطور ہوا ہوگا، اب ادھر کشف، کشف والے کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کشف ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ زبان سے کہلوا دیتا ہے بات، اب حضرت حاجی صاحب دعا کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے مولا، بیماری بھی تیری نعمت ہے اور صحت بھی بہت تیری نعمت ہے، بیماری بہت بڑی نعمت ہے جس کا تحمل ہر شخص نہیں کر سکتا، صحت اور تندرستی بھی تیری نعمت ہے، اے اللہ تیرا بندہ کمزور بندہ ہے، بڑی نعمت کا تحمل نہیں کر سکتا، تو اسے چھوٹی نعمت سے بدل دے، اس پر بات آ جائے گی، ہاں یہ سنا جا رہا، تم اپنی طرف سے نہ بلا تجویز کرو نہ راحت، بلکہ جو وہ تجویز کر دیں اس پر راضی رہو، حضرت پہلے تجویز کی بات، یہ نسخہ ایسا اکسیر ہے جس سے نہ اہل دنیا کو استغنا ہے نہ اہل دین کو، نہ علماء کو استغنا ہے نہ عرفا کو، بلکہ تمام عالم اس کا محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فہم صحیح نصیب فرمائے دین کا، اور ان حضرات کے ارشادات کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، اصلاح فکر بھی اور اصلاح عمل بھی۔